श्लोक पद्मान्यर्कांशु निष्ठयुताः पीत्वा पावक विप्रुषः भूयो वमन्तीव मुखैरुद्गिरणा ऋणरेणुभिः। सूर्य की किरणों से उगली हुई अग्नि बूंदों को पीकर पद्म अरुण पराग को उगलने वाले मुखों से अत्यधिक मात्रा में उगल रहे हैं। पद्म पद्मान्यर्कांशु आदि छानबेवें पद में निष्ठयुता वमंती और उद्गीर्ण शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग इस पद को हृदयग्राही बना देता है। वधुर निष्ठीवती बहु थूकती है वाक्य में निधन ष्ठीव थूकना का प्रयोग मुख्यार्थ में हुआ है और वह जुगुप्सा कारक होने से काव्य में वर्ज्य है। यदि मुख्यार्थ में जुगुप्सा रहित शब्द का गौण प्रयोग किया जाता है तब उसके सौंदर्य का तो कहना ही क्या। देव पत्नियों द्वारा इंद्र के वृत्रवध कर्म का गीतों में वर्णन किए जाने के लिए निम्न ऋचा में बुनना अर्थ वाली उवुह क्रिया का प्रयोग समाधि गुण का सुंदर उदाहरण है। इसके प्रयोग से ताना बाना उज्ज्वल वर्ण सुंदर डिजाइन आदि वस्त्र धर्म अर्क पर उज्ज्वल वर्णों वाले सुंदर शब्दार्थ के ताने बाने रूप में आरोपित किए जाते हैं। श्लोक इति हृद्यम महृद्यम तु निष्ठीवती वधूरिति युगपन्नैक धर्माणां मध्यासश्च मतो यथा। एक साथ एक से अधिक धर्मों का अध्यास भी समाधि माना गया है। जैसे यह समाधि गुण एक धर्म के सम्यक आरोपों से भी निष्पन्न होता है और अनेक धर्मों के आरोप से भी। श्लोक गुरु गर्भ भर क्लांता स्तनंत्यो मेघ पंक्तयः अचलाधित्य को संग मीमांसम धिशेरते। भारी गर्भ के बोझ से क्लांत आवाज करती हुई ये मेघ पंक्तियां पर्वत की ढलान की गोदी में लेटी हुई हैं। जैसे पर्वत के ढलान पर पड़ी पानी से बोझिल मेघमाला का वर्णन करते हुए कवि ने उसके लिए ऐसे धर्मों का वर्णन किया है जो मुख्य वृत्ति से सहेली की गोद में लेटी अलसाई गर्भिणी स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं। श्लोक उत्संगे शयनम संख्या स्तननम गौरवम क्लमः इति मे गर्भिणी धर्मा बहवो न्यत्र दर्शिताः। सखी की गोंदी में लेटी आवाज करना भारी पंथकान ये गर्भवती स्त्री के बहुत से धर्म उस स्त्री से भिन्न मेघ पंक्तियों में दिखलाए गए हैं। श्लोक तदेत काव्य सर्वस्वम समाधिर नाम यो गुणः कवि सार्थ समग्रोपि तमेनम नुगच्छति। वह यह काव्य का सर्वस्व समाधि नामक जो गुण है समूचा कवि समुदाय ही इसका अनुगमन करता है। यह समाधि गुण स्पष्टतः अर्थगत है। इसकी प्रशंसा में आचार्य कहते हैं कि यह समाधि गुण गद्य पद्य मिश्र प्रत्येक प्रकार के काव्य का सर्वस्व है। इस प्रकार के प्रयोग से हर प्रकार का काव्य अत्यंत सुंदर बन जाता है। यह गुण काव्य के सभी मार्गों में समान आदर पाता है अर्थात वैदर्भ और गौण दोनों मार्गों से समान रूप से आदरणीय है। दंडी का समाधि गुण भरत के समाधि से भिन्न है। अर्थ का जो विशेष प्रतिभाशाली सहृदयों द्वारा उपलक्षित किया जाता है और उस अर्थ से संपन्न गुण समाधि कहा जाता है। यहाँ यद और तद शब्दों से एक ही वस्तु को अविधेय होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत का यह समाधि गुण अर्थगत है पर अभिनव गुप्त ने अन्य गुणों के लक्षणों के समान वामन के प्रभाव में इस गुण को भी पूर्वार्ध में अर्थ गुण परक और तृतीय पाद में शब्द गुण परक लगाया है। अग्नि पुराण में समाधि गुण नहीं अपितु अर्थालंकार माना गया है यद्यपि लक्षण यही है। श्लोक इति मार्गद्वयम् भित्नम् तत्स्वरूपम् निरूपणात् तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकवि स्थिताः। इस प्रकार दोनों मार्ग उनके स्वरूप के निरूपण से सिद्ध होता है कि अलग है। उनके प्रत्येक कवि में स्थित भेदों का तो कथन संभव नहीं है। वैदर्भ और गौण दोनों मार्गों का 40वें श्लोक में प्रतिज्ञात प्रस्फुटांतर स्वरूप विस्पष्ट रूप से 60 श्लोक में प्रतिपादित करने के बाद गुण मार्ग का उपसंहार आचार्य दंडी ने अगले दो 101 और 2 श्लोक में किया है। वैदर्भ और गौण दोनों मार्गों में स्वरूप की दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। यह इनके पीछे 60 श्लोक में प्रतिपादित स्वरूप निरूपण से सिद्ध होता है। कवि समुदाय के शैली भेद से जैसे दो मार्ग अलग अलग हैं, वैसे ही प्रत्येक कवि की भी अपनी शैली होती है, जिसके कारण प्रत्येक कवि के माधुर्य आदि में सूक्ष्म अंतर होता है। पर यह अंतर मार्ग भेद कारक नहीं है और इतना सूक्ष्म है कि इस अंतर का निरूपण संभव नहीं है। श्लोक इक्षु क्षीर गुणादिनाम माधुर्य स्थान्तरम महत तथापि न तदा ख्यातुम सरस्वत्यापि शक्यते। ईख दूध गुड़ आदि की मिठास में बड़ा अंतर है, तब भी उसे बता पाना सरस्वती के लिए भी संभव नहीं है। ईख दूध और गुड़ आदि सब पदार्थ मीठे हैं, इनकी मिठास एक दूसरे से भिन्न है, तब भी इनके भेद को बतला पाना सरस्वती के भी बस का नहीं है। हम लोगों की तो विसात ही क्या है। यही कारण है कि सभी शास्त्रकार अपने शास्त्रों में सर्वभेद व्यापी सामान्य लक्षण का ही प्रतिपादन किया करते हैं। लक्ष्य के व्यक्तिगत भेद का निरूपण न लोक में संभव है और न शास्त्र में। गुणों पर विचार। दंडी के श्लेष समता सुकुमारता और ओजस गुण बंधगत हैं, माधुर्य गुण शब्दगत भी हैं और अर्थगत भी। शेष 5 प्रसाद अर्थ व्यक्ति उदारता कांति और समाधि गुण अर्थगत हैं। ये मार्ग विशेष में अभिष्ट और दूसरे मार्ग में उसका विपर्य अनभिष्ट होने के कारण विशेष अलंकार हैं। शेष अलंकारों से भेद करने को इन्हें गुण कहा गया है। दंडी के पश्चात विद्वत समाज में गुणों और अलंकारों पर एक अन्य दृष्टि से विचार होने लगा। ये काव्य के साथ किस प्रकार से संबद्ध हैं? इस विषय में दो मत प्रचलित हुए। गुणों और अलंकारों का काव्य की घटक पदावली रूप शरीर के साथ नित्य संबंध है। गुणों का तो शरीर और शौर्यादि गुणों के समान नित्य संबंध है, किंतु अलंकारों का अनित्य संबंध है। मत के उपस्थापक आचार्य उद्भट हुए तथा मत का उपब्रिंहण किया उन्हीं के समय के आचार्य वामन ने। इसके अतिरिक्त उद्भट ने एक बात और की, गुणों को पद रचना का धर्म बताया। उनकी यह स्थापना स्वीकार करके वामन ने अपना रीति सिद्धांत स्थापित किया। गुणयुक्त पदों की रचना रीति है तथा वह काव्य का आत्मा है, अर्थात काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पद रचना चूंकि शब्दार्थ घटित होती है, इसलिए वामन ने गुणों को शब्द और अर्थ के माध्यम से पद रचना का धर्म बताया। जिन्हें शब्द गुण कहा जाता है वे मुख्य वृत्ति से पदबंध के अर्थात रचना के गुण हैं और गौण वृत्ति से रचना के घटक शब्दों के गुण हैं। इसी प्रकार अर्थ गुण भी मुख्यतया पद रचना के साथ संबद्ध हैं। तदगुण होने से वे उपचार से अर्थ धर्म कहे जाते हैं। अलंकार मुख्य वृत्ति से ही शब्द और अर्थ के साथ संयोग संबंध से संबद्ध होते हैं। वामन के मत में गुणों और अलंकारों से संस्कृत शब्द और अर्थ का समन्वित रूप काव्य कहलाता है। इन शोभा व धर्मों में से गुण शब्दार्थ रूप काव्य में पद रचना में आश्रित होकर शोभा की सृष्टि करते हैं। गुण शब्द एवं अर्थ में भिन्न भिन्न प्रकार से नित्य शोभा वह होते हैं, अर्थात वे अगर अकेले भी होते हैं तो काव्य में शोभा आ जाती है। अलंकार गुणों के द्वारा आहृत शोभा में ही वृद्धि करते हैं। काव्य में शोभा की सृष्टि करने की सामर्थ्य अलंकारों की नहीं है। काव्य में यदि गुण न हो केवल अलंकार हो तो काव्य में शोभा नहीं आ पाएगी, अतः वे अनित्य शोभा वह हैं। शब्द और अर्थ के समन्वित रूप का विभक्ति युक्त रूप पद होता है। काव्य में पदों का गुणयुक्त निबंधन किया जाता है। पदों की यह गुणयुक्त रचना वामन के मत में रीति है। गुणों को पद रचना का धर्म सर्वप्रथम उद्भट ने बताया था, यह पीछे बताया जा चुका है। वामन ने उसी को अपने सिद्धांत की आधारशिला बनाया। दंडी के कुछ गुणों का संबंध बंध से है तो कुछ का अर्थ से और एक माधुरी का शब्द और अर्थ दोनों से बताया था। इस प्रकार उन्होंने गुणों का संबंध पद रचना से नहीं जोड़ा। उनके गुणयुक्त काव्य के दो मार्ग थे, वैदर्भ और गौण। यो मार्ग तो अन्य भी थे, किंतु ये दो बिल्कुल विस्पष्ट अंतर वाले मार्ग थे। वामन ने उद्भट के मत का अनुसरण करके गुणों को गौणतया शब्दगत और अर्थगत बताकर मुख्यतया संघटना का धर्म बताया और उसके माध्यम से रीति की कल्पना की। उन्होंने दंडी प्रोक्त मार्गों के विपर्य को सीमित किया। दंडी और वामन दोनों ने वैदर्भ मार्ग अथवा रीति में गुणों का प्रयोग संभव माना, किंतु गौणी रीति में वामन ने ओज और कांति को ही प्रशस्त माना। इसके अतिरिक्त वामन ने एक मध्यम मार्ग पांचाली रीति की उद्भावना और की। वामन के मत में गुणयुक्त शब्दार्थ, उनमें से निष्पन्न पद रचना और उससे निष्पन्न काव्य, इन तीन स्तरों में रीति का प्राण गुण है। काव्य का प्राण आत्मा रीति है। भामह ने माधुर्य, ओजस और प्रसाद नामक तीन गुणों का ही यत्किंचित विवरण किया है। उसमें उन्होंने माधुर्य और ओज के भेदक धर्म के रूप में समास की अल्पता और अधिकता ही कथन किया है। संभवतः इससे प्रेरणा पाकर वामन ने समास को भी रीतियों से जोड़ा है। वामन ने रस की चर्चा केवल कांति नामक अर्थ गुण के संबंध में की है। यह कांति गुण वैदर भी रीति में समग्र गुणता के कारण अपेक्षित है, गौणी रीति में साक्षात विहित है। पांचाली रीति माधुर्य और सौकुमार से उपपन्न होती है। अर्थात इसमें इन गुणों का अधिक महत्व है। इसमें और गौणी में भी अन्य गुण इनमें अपेक्षित गुणों के अंग होकर इनसे हीन होकर प्रयुक्त हो सकते हैं। अर्थात गौणी और पांचाली में अन्य गुणों का निषेध वामन को इष्ट नहीं है। अतः वामन काव्य में रस को स्थान तो देते हैं, पर अधिक महत्व नहीं देते। इसलिए उनके वांग मधु आनंद सहृदय रंजकत्व तथा स्वादु का अर्थ गुणयुक्त पद रचना से उत्पन्न शोभा का आस्वाद अर्थात तजन्य आह्लाद ही है, श्रृंगादि रस नहीं। आचार्य रुद्र ने रीति शब्द तथा उनके नाम तो ले लिए वामन के ही, किंतु उनकी विशिष्ट पदरचना को स्वीकार न करके भामह से प्रारब्ध तथा वामन द्वारा पदरचना के गुणातिरिक्त धर्म के रूप में स्वीकृत समास के भावाभाव को रीतियों का व्यावर्तक धर्म माना है। उन्होंने लाटिया नामक एक अन्य रीति की उद्भावना करके कुल चार रीतियां मानी है। उन्होंने रचना में चारुत्व का आधान करने वाले जिस पदगुण की उद्भावना की है वह मामन के या अन्य आचार्यों के गुणों से कहीं मेल नहीं खाता। वाक्य में प्रयुक्त पदों में न्यूनत्व और अधिकत्व दोषों के न होने से और वाचकत्व सूक्ष्मत्व पुष्टार्थ शब्दत्व तथा चारुपदत्व नामक उपादेयों के उपादान से पद गुण निष्पन्न होता है। इस प्रकार रचना में चारुत्व का आधान होने पर रुद्रट सन्निवेश से लभ्य चारुत्व को शब्द गुण मानते हैं। इसे सिद्ध होता है कि वामन की रीतियों से रुद्रट की रीतियों का समास के विषय में ही साम्य है। माधुर्य आदि गुणों के कारण रचना में विशेषता का आधान रुद्रट नहीं मानते, अर्थात रुद्रट ने गुणों को मान्यता नहीं दी। वामन ने जहाँ काव्य में रस का महत्व कांति नामक गुण के द्वारा आका था, वही रुद्रट रीतियों का रस से साक्षात संबंध मानते हैं। वामन के मत में काव्य गुणों से प्राप्त तथा अलंकारों से अतिशायित शोभा अपर नाम सौंदर्य के कारण ग्राह्य है, जबकि रुद्रट के मत में काव्य में सर्वोपरि स्थान श्रृंगार आदि रस का है। इस प्रकार न केवल रुद्रट की रीतियों का स्वरूप वामन की रीतियों से भिन्न है, अपितु काव्य में सर्वोपरि तत्व के बारे में भी दोनों आचार्य में मूलभूत अंतर है। वामन के यहाँ रीतियां साध्य हैं, जबकि रुद्रट के मत में पद रचना रीतियां रस के प्रति अंग हैं, साधन है। इससे सिद्ध होता है कि रुद्रट सिद्धांत के स्वरूप की दृष्टि से वामन के निकट न होकर आनंदवर्धन की भूमिका प्रशस्त करने के कारण उनके पथिकृत हैं। रुद्रट के द्वारा विरस दोष की कल्पना भी इसी निष्कर्ष की उपोद्बलक है। अग्निपुराण के काव्यशास्त्री ने काव्य में रस के महत्व की रुद्रट की स्थापना को प्रखर मुखरता प्रदान की है। वे गुणों के वामन सम्मत महत्व को यद्यपि स्वीकार करते हैं, उनके मत में गुण काव्य में महती शोभा प्रदान करते हैं, तथापि उन्होंने रीतियों के स्वरूप के बारे में रुद्रट का ही अनुमान किया है, वामन का नहीं। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। इसके अतिरिक्त ध्वन्यालोक से अन्यत्र उस युग के ग्रंथों में ध्वनि शब्द तथा उसका लक्षण सर्वप्रथम अग्नि पुराण में ही उपलब्ध होता है। आचार्य आनंदवर्धन ने भामा द्वारा प्रोक्त तीन गुणों को उनके स्वरूप में परिवर्तन करके स्वीकार किया। भामा के गुणों के आधार समासवत्व को उन्होंने कैशित से सूचित रुद्रट का अनुगमन करते हुए संघटना में डाला। वामन की पदरचना से सांकर्य का परिहार करने के लिए रचना संज्ञा के स्थान पर संघटना जैसी संज्ञा का प्रयोग किया। वामन के शब्द गुण का उपयोग ध्वनि के व्यंजक वर्ण विन्यास के रूप में किया। ऐसा करके उन्होंने कोमला परुषा आदि उद्भट प्रोक्त तथा रुद्रट स्वीकृत वृत्तियों का संबंध अनुप्रास के स्थान में रस से स्थापित किया। आनंदवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दो बातों में है। उन्होंने गुणों का संबंध पूर्वाचार्य संबंध शब्दार्थ रूप शरीर से हटाकर शब्दार्थ से व्यंग्य काव्यात्मा रस के साथ जोड़ा। इसकी प्रेरणा उन्हें भरत से मिली है। वर्ण पद वाक्य तथा संघटना को रस का साक्षात आश्रय न बताकर उसे रस के धर्म गुण का आश्रय लेकर रसों का व्यंजक बताया है। काव्य का आत्मा संघटना नहीं अपितु ध्वनि है। ध्वनि का भी आत्मा रस है। अतः वस्तुतः काव्य में सर्वोपयोगी तत्व रस है। उस रस का जो अवलंबन करते हैं वे गुण हैं। इस बात को रूपक विधान की दृष्टि से यदि देखें तो संघटना काव्य का शरीर है, रस उसका आत्मा है, गुण उम्र रस का उसी प्रकार धर्म है, गुण उस रस का उसी प्रकार धर्म है जिस प्रकार शौर्य आदि आत्मा के धर्म है। गुणों का यह रस धर्मत्व उपपन्न होता है। इनके चित्त वृत्ति स्वरूप होने के कारण अन्यथा ये अंतःकरण की अनुभूति स्वरूप रस का धर्म नहीं हो सकते। चित्त की द्रुति आर्द्रता करने वाला यह रस धर्म माधुर्य है, उसे दीप्त अथवा भासित करने वाला ओज है और उसे वस्तु प्रतिभा सन्न समर्थ स्वच्छ दर्पण के समान स्वच्छ करने वाला गुण प्रसाद है। प्रत्येक चित्त वृत्ति प्रत्येक रस के योग्य नहीं होती, अतः सब गुण भी सब रसों के धर्म नहीं है। माधुर्य श्रृंगार में उसमें भी विप्रलंब श्रृंगार में और करुण में विशेष प्रकर्ष प्राप्त करता है। प्रसाद गुण सभी रसों की अभिव्यक्ति में उपयोगी होता है। रौद्र वीर भयानक और विभत्स में चित्त की दीप्ति होने से ओज प्रकृष्ट होता है। हास्य और अद्भुत यदि श्रृंगार विभाव प्रभाव हैं तो माधुर्य और यदि अन्य विभाव प्रभाव हैं तो ओज प्रकृष्ट होता है। इसी प्रकार शांत भी यदि करुण विभाव प्रभाव है तो माधुर्य और यदि वीर विभाव प्रभाव है तो ओज प्रकृष्ट होता है। नाटक आदि में तो रस की अभिव्यक्ति अभिनय से भी हो सकती है, किंतु श्रव्य काव्य में तो रसाभिव्यक्ति शब्दार्थ संघटना रूप काव्य शरीर के द्वारा ही होगी। अतः ओज आदि गुणों का स्थूल आश्रय होने के कारण संघटना अर्थात शब्दार्थ को गौण रूप से गुण ऐसे ही कह दिया जाता है, जैसे हृष्ट पृष्ठ शरीर को वीर और कोमल कमनीय को श्रृंगार का व्यंजक उपचार से मान लिया जाता है। रुद्रट ने रसों में रीतियों का प्रयोग औचित्य के अनुसार करने का परामर्श दिया है। आनंदवर्धन ने इसे समुचित विस्तार से स्पष्ट किया है। संक्षेप और व्यवस्था करने में चतुर आचार्य मम्मट ने आनंदवर्धन का सिद्धांत और अभिनव गुप्त की उनकी व्याख्या संक्षेप से प्रस्तुत करके वामनोक्त 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों का अंतर्भाव इन्हीं चित्तवृत्ति समाश्रित गुणों में कर दिया। इसके अतिरिक्त रुद्रट के सन्निवेश चारुत्व रूप शब्द गुण के व्याख्यात रूप मथुरा आदि 5 वृत्तियों का अंतर्भाव आनंदवर्धन को अभिमत वर्ण समास और रचना में कर दिया है। इस प्रकार भामा से सूक्ष्म संकेत के रूप में उद्भट त्रिगुणवाद का स्वरूप आनंदवर्धन के ग्रंथ में पूरी तरह से बदल दिया गया। भरत और दंडी के 10 गुणों और वामन के 10 शब्द गुणों तथा 10 अर्थ गुणों से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं। भामह के गुणों से भी समास के अल्पत्व भूयस्त्व आदि स्थूल रूप से ही साम्य है। व्यावर्तक धर्म की दृष्टि से चित्त वृत्ति समाश्रितता के समावेश के कारण ये भामह के गुणों से नितांत भिन्न है, नाम मात्र से ही समान है। हाँ, रुद्रट ने आनंदवर्धन के सिद्धांत का मार्ग प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। नमोस्तु पथिकृद्भ्य पथिवृद्भ्यश्च। श्लोक: नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम असंतश्चाभियोगोस्याः कारणं काव्यसंपदः जन्मजात प्रतिभा बहुत स्वच्छ शास्त्र ज्ञान एवं अविरत लगन इस काव्य रूपी संपदा का कारण है। काव्य के लक्षण भेद तथा वैदर्भ और गौण मार्गों में अभिष्ट गुणों का वर्णन करने के बाद आचार्य दंडी ने काव्य के हेतुओं का विचार परिच्छेद के अंत में तीन श्लोकों से किया है। काव्य रचना में तीन हेतु हैं, स्वाभाविक प्रतिभा, अत्यंत निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा काव्य रचना का अनवरत अभ्यास, श्रेष्ठ काव्य रचना, ये तीनों ही हेतु हैं। यह कारण कारणम के एक वचन से सूचित होता है। तीनों में सर्वाधिक महत्व है जन्मजात प्रतिभा का, जिसके होने से कवि को नए नए विषयों का स्फुरण नई नई तरह से होता है। यह प्रतिभा जन्म जन्मांतर के पुण्यों तथा काव्याभ्यास आदि के संस्कार के कारण मनुष्य जन्म से भी हो सकती है, तो कालिदास आदि के समान जीवन में कभी भी प्रकट हो सकती है। यों तो इसके होते न शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है और न काव्य रचना के बहुत अभ्यास की। हाँ, ज्ञान और अभ्यास के होने से काव्य में प्रतिभा मात्र प्रसूत काव्य की अपेक्षा परिष्कार आ जाता है। श्लोक न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभा नमद्भूतम् श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम् करोत्येव कमप्यनुग्रहम्। पिछली वासना के गुण से जुड़ी अद्भुत प्रतिभा यद्यपि नहीं है, तब भी शास्त्रों के ज्ञान से और परिश्रम से उपासना की हुई वाग्देवी निश्चित ही कोई अनुग्रह करती है। काव्य जीवन की मधुर व्याख्या है, अतः जीवन में अपेक्षित विविध ज्ञान धाराओं का ज्ञान उसके प्रणयन में स्वभावतः आवश्यक होता है। इन्हें ही काव्य की अंगभूत विद्या कहा जाता है। ये विद्याएं देश काल पात्र भेद से बदली रहती हैं। पर भाषा शास्त्र एवं काव्य शास्त्र, ये दो शास्त्र काव्य प्रणयन में आधार का काम करते हैं। शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण है लोकवृत्त का ज्ञान। भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र और लोकवृत्त, इन तीनों के ज्ञान में काव्य के उपादान कारण भाषा का ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है, चाहे वह जीवन में व्यवहार से सीखी हो या कोश और व्याकरण निरुक्त आदि की सहायता से। इसके अनंतर लोकवृत्त का ज्ञान आवश्यक है, जो जीवन में अनुभव से ही सही तरह से आ सकता है। यों विविध शास्त्र भी इसका ज्ञान कराने में उपयोगी हैं। काव्य शास्त्र का ज्ञान काव्य रचना के लिए सबसे अंत में आवश्यक है। यह शास्त्र वस्तुतः पुरातन काव्यों पर ही तो आधारित है। नाना कवियों की नानाविध अभिव्यक्ति के विवेचन विश्लेषण से ही काव्य शास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ है। अतः यदि कोई प्रतिभाशाली भाषा और लोकवृत्ति के ज्ञान की दृष्टि से समर्थ कवि पुराने कवियों की अभिव्यक्ति की छाया अपने काव्य में नहीं आने देना चाहता, तो उसके लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक अपठित लोक कवियों के काव्य इसका उदाहरण है, पर इससे काव्य शास्त्र का महत्व कथम अपि कम नहीं हो जाता। उसके ज्ञान से काव्य में परिष्कार अवश्य आता है और काव्यानंद प्राप्त कराने में तो वह एक बहुत आवश्यक शास्त्र है। श्लोक तदस्त तंद्रैर निशम सरस्वती श्रमादुपाश्या खलु कीर्तिमिप्सुभिः कृषे कवित्वे अपि जनाः कृत श्रमा विदग्ध गोष्ठीषु विहर्तुमीशिते। इति श्रीमदाचार्य दंडिनः कृतौ काव्यादर्शे काव्य मार्ग विभागो नाम प्रथम परिच्छेदः। इसलिए कीर्ति पाना चाहने वालों को चाहिए कि सरस्वती की उपासना प्रमाद रहित होकर परिश्रम से करें। कवित्व दुर्बल होने पर भी परिश्रम करने वाले लोग विद्वानों की गोष्ठियों में विहार करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीयुत आचार्य दंडी की कृति काव्यादर्श में काव्य मार्ग विभाग नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ। प्रतिभा तथा विविध प्रकार का ज्ञान भी अकिंचित कर रहता है, यदि मनुष्य उनका प्रयोग नहीं करता। यस्तु क्रियावान न सपंडितः। इसके अतिरिक्त अभ्यास का एक अन्य दृष्टि से बहुत महत्व है। अगर किसी में अदृष्ट के बल से प्राप्त होने वाली स्वाभाविक प्रतिभा नहीं है तथा ज्ञान भी नहीं है, तब भी यदि वह काव्य रचना के अभ्यास में निरंतर श्रम से वाग्देवी सरस्वती की उपासना करता है, तो वे उस पर अवश्य ही कृपा करती हैं। वह कवि कहलाकर कृतकृत्य होता है। प्रतिभा, श्रुत और यत्न इन तीनों में पूर्व पूर्वतर उत्कृष्ट है, किंतु श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए व्यासरज्य वृत्ति से इन तीनों की आवश्यकता है, अन्यतर की नहीं। हाँ, कारण तीनों ही है। प्रतिभा एवं यत्न साक्षात कारण है, श्रुत सहायक है। ऋग्वेद के अनुसार काव्य सरिता के प्रवाह और बादल से वृष्टि के समान स्वाभाविक प्रतिभा प्रसूत होता है। देवी वाक को देवताओं ने जन्म दिया है। यो यद्यपि यह कथन काव्य काव्य वाक के लिए साधारण है, तथापि काव्य रूपी वाक की उत्पत्ति के लिए भी इसे लगाया जा सकता है। अर्थात काव्य रचना मूलतः अदृष्ट से संभव है। ऋग्वेद में ही काव्य को हृदय समुद्र से उद्भूत बताया है। इसका विषय यावत ब्रह्म है। कवि अपनी मनीषा से विषय को पवित्र स्वच्छ अपने काव्य के अनुकूल करते हैं और तब काव्य का प्रणयन होता है। एक अन्य स्थल में कहा गया है कि पतंग आत्मा काव्य को मन से पुष्ट करता है, उसे गंधर्व गर्भ में बोलता है। द्योतमान प्रकाशयुक्त उस मनीषी का मनीषा की कवि लोग रित के स्थान में रक्षा करते हैं। प्रकृति में इस कथन का आशय यह है, काव्य प्रतिभा से प्रसूत है। कवि का कथ्य उसकी मेधा में प्रतिभात होता है, उस पर मंथन होता है। अर्जित ज्ञान के प्रकाश में वह कथ्य प्रकाशित हो उठता है और निरंतर गतिशील काव्य धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका लक्ष्य है रित। अतः प्रतिभा, श्रुत और यत्न की काव्य हेतुता वैदिक विचारधारा के अनुकूल है। व्याकरण संप्रदाय में पाणिनी की सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा वस्तुतः प्रतिभा की ही प्रशंसा है। काव्यशास्त्र के आचार्य में भामह ने इन तीनों को ही काव्य रचना के लिए आवश्यक बताते हुए प्रतिभा को सर्वोच्च स्थान दिया है। दंडी ने प्रतिभा की सर्वोपरिता उसके प्रथमोल्लेख से तथा यद्यपि प्रतिभा नहीं है कथन से सूचित की है। एक अध्यापक की तरह उन्होंने शिष्य कवि के उत्साह वर्धनार्थ श्रुत और अभ्यास के बल पर भी कवि हुआ जा सकता है कहा है। परवर्ती आचार्यों ने भी इन तीनों को ही काव्य हेतु बताकर प्रतिभा को ही सर्वोच्च स्थान दिया है। वामन ने परिगणन की दृष्टि से तो प्रतिभा को बहुत अंत में रखा, उनका ज्यादा और व्युत्पत्ति पर ही है, किंतु प्रतिभा को कवित्व का बीज तथा अनेकों काव्य का अंग बताकर बात को कुछ संभालने की चेष्टा की है। बाद के आचार्यों ने इस विषय में कुछ नया नहीं कहा है। राजशेखर ने प्रतिभा से भिन्न शक्ति को ही एकमात्र हेतु माना है। प्रतिभा और श्रुत से तो शक्ति का विस्तार होता है। कवि की कीर्ति को पाने की इच्छुक सुधीजनों को आचार्य दंडी का उचित परामर्श है। सुधीजन अपनी प्रतिभा के बारे में सदा अनाश्वस्त रहा करते हैं, इसलिए प्रतिभा अगर कम लगे तो भी उन्हें निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। अप्रमत्त होकर सदा काव्य रचना के अभ्यास में श्रम करते रहना चाहिए। उनकी यही सरस्वती की सेवा है। इस सेवा के प्रसाद स्वरूप ऐसे सततामभ्यासी सुधी जन समाज में जब तब होने वाली विदग्ध गोष्ठियों में निर्द्वंद भाव से विहार करने में समर्थ होते हैं। दंडी का यह कथन केवल काव्य रचना पर ही नहीं अपितु सभी प्रकार की रचनाओं पर लागू होता है। लोक प्रसिद्धि के अनुसार वोपदेव ने इसके उदाहरण हैं। इति श्री शिव नारायण शास्त्री विरचितायाम अष्ट ग्रंथी कनिष्ठायाम श्री काव्यादर्श प्रसादिन्याम काव्य मार्ग विभागो नाम प्रथम परिच्छेदः।